प्रातः क्लास चल रहा था, तीस अक्टूबर 1966, दूसरे पेज के मध्यांक में बात चल रही थी कि नई दुनिया की स्थापना करूंगा तो नई दुनिया में रहने वालों की भी तो स्थापना होगी ना। तो देखो, अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हो, और ये तुम जानते हो कि ये जो पुरानी दुनिया है इस लड़ाई से, इस महाभारी महाभारत की जो लड़ाई अभी लग रही है उनसे ये विनाश होगा। कैसे होगा? कलप पहले मुआफिक, ये जामा के प्लान अनुसार होगा, क्योंकि ये जामा तो बना बनाया है ना। बाप ने समझाया है ये जो चक्कर है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का, इसमें जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी तुमने अब तक जाना है कि भाई सतयुग में ये देवताओं का राज्य था, उन देवताओं के राज्य को 5000 वर्ष हुआ, अर्थात सतयुग की आदि को 5000 वर्ष हुआ, और शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है कि सतयुग के आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण को 16 कला संपूर्ण तो समझते ही हैं, और नारायण तो सतयुग का महाराजा था, वो तो था ही 16 कला संपूर्ण। तो जो 16 कला संपूर्ण नारायण कहे जाते हैं वो बचपन में कृष्ण थे, इसलिए कृष्ण का बाल रूप पूजा जाता है। महाभारत लड़ाई में बड़ा रूप दिखाया है, उसे पूजा नहीं जाता है, परंतु वो महाभारत लड़ाई को भी विद्वान आचार्यों ने 5000 वर्ष बोला है। परंतु दिखाई दिया है त्रेता द्वापर के अंत में वो लड़ाई हुई, जो भगवान ने महाभारी महाभारत युद्ध कौरव पांडवों के बीच में कराया, सत्य असत्य का युद्ध कराया। तो असत्य हार गया और सत्य जीत गया। तो जब सत्य जीतेगा तो सतयुग आएगा या कलयुग आएगा? उन विद्वान आचार्यों ने दिखाई दिया कि भगवान आया, महाभारत युद्ध कराया, और रिजल्ट में पाप युग की स्थापना हो गई। अब बताओ, भगवान तो पाप नाश करने वाला है, सर्वथा पाप रहित है, इसे कहते हैं सत्य चित्त आनंद। तो सत्य की दुनिया स्थापन करेगा ना। चैतन्य देवताओं की दुनिया स्थापन करेगा ना। आनंदमय दुनिया स्थापन करेगा। तो समझ लेना चाहिए कि भगवान कब आया होगा। ऐसे तो गीता में भी लिख दिया है मनुष्य गुरुओं ने, कि भगवान जब आते हैं तो सत्य की स्थापना करते हैं। तो साबित होता है झूठ खंड का विनाश होता है, और झूठ खंड तो है ही तामसी युग कलयुग, जिस कलयुग के अंत में भगवान आकर के इस दुनिया में महाभारी महाभारत युद्ध कराते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है धर्म संस्थापनार्थ है विनाशाय च दुष्कृतम्। सद्धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ और दुष्ट धर्मों का विनाश करा देता हूँ। इसलिए बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सात धर्मों को त्याग दे, जो भी देहधारी धर्मगुरुओं के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म हैं, उन सात को त्याग दे। मेरे को तो देह ही नहीं है, मैं तो आत्माओं का बाप सिर्फ आत्मा हूँ, और जन्म मरण के चक्र से न्यारी आत्मा हूँ। तुम आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती हो, इसलिए पूर्व जन्मों की बातें भूल जाती हो। मैं तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, तो भूलने का सवाल पैदा ही नहीं होता। मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है। कोई मनुष्य मात्र ज्ञान का सागर नहीं हो सकता, क्योंकि सब मनुष्यों की आत्माएं पार्टधारी हैं इस रंगमंच पर। ये दुनिया एक रंगमंच है, इस रंगमंच पर है। जैसे उस नाटक में, हद के नाटक में स्टेज पर नंबरवार एक्टर्स आते रहते हैं और संख्या बढ़ती रहती है, लास्ट में सारे एक्टर्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, और अंत में स्टेज छोड़ करके अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। ऐसे ही ये मनुष्य आत्माएं भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सतयुग के आज से लेकर के धीरे धीरे आती रहती हैं। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, लगातार संख्या में वृद्धि होती जाती है, दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती जाती है। नहीं तो कोई बतावे कि हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि पिछले समय के मुकाबले आने वाले नए समय में दुनिया की जनसंख्या घट गई हो? कभी घटी नहीं है, बढ़ती ही गई है। विद्वानों के अनुसार तो आत्मा निर्वाण धाम चली जाती है, फिर कभी वापस ही नहीं आती। अरे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा है, अगर निर्वाण धाम जाती रहे, कभी वापस ही ना आए, तो संख्या कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? लेकिन संख्या लगातार बढ़ती जाती है। इसे साबित होता है ये पार्टधारी आत्माएं जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के 84 के चक्र में पार्ट बजाती हैं, ज्यादा से ज्यादा 84 चोले लेती हैं, वो कहीं और लोक से आ रही है। वास्तव में त्रिलोकी नाथ गाया हुआ है, वो तीन लोक और कोई लोक नहीं है। एक है आत्माओं का धाम, अंग्रेज लोग उसे कहते हैं सुप्रीम अबोड, सोल बर्ड। मुसलमान कहते हैं कि रूहे और रूहानी बाप अल्लाह अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। हिंदू भी मानते हैं ऊंचे ऊंचे धाम है परम धाम, परे ते परे धाम, ब्रह्मलोक। आत्मलोक जो बाप का घर, वो ही बच्चों का घर होता है। बाप पारलोक का वासी है तो बच्चे भी, जो भी ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, निराकार आत्माएं हैं, क्योंकि इन आंखों से नहीं देखी जाती। वो निराकार आत्माएं निराकार बाप के धाम में रहती है, है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, भले इन आंखों से नहीं देखी जाती है, लेकिन शरीर छोड़ करके जब आत्मा जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? है मुर्दा हो जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। इससे साबित होता है कि आत्मा ज्योति स्वरूप है, अति सूक्ष्म। गीता में जो वर्णन है अणुअणियांशम, अणु से भी अणुरूप है, अति सूक्ष्म। वो अति सूक्ष्म आत्मा रूपी रिकॉर्ड कहो, आत्मा रूपी एक्टर कहो, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आता है। और नंबर वार सभी आत्माएं पार्ट बजाने आती है। कभी तो नाटक पूरा होता होगा, जैसे दुनियावी नाटक तीन चार सीन के होते हैं, ये मानवीय षष्ठ रूपी रंगमंच का नाटक भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार का भागों में बटा हुआ है, चार सीन हैं। चार सीन जब पूरे होते हैं नाटक पूरा हो जाता है, फिर सब आत्माओं को सब एक्टर्स को घर वापस जाना पड़ता है। वापस जाने से पहले हर आत्मा रूपी एक्टर को अपने जन्म जन्मांतर के पार्ट का पता चलता है, क्योंकि भगवान बाप आकर के सभी आत्माओं को बताते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि वो बाप डायरेक्टर है। डायरेक्टर सदैव पर्दे के पीछे रह करके इशारे देता है, देवात्मा इशारों को जल्दी पकड़ लेती है, मनुष्य आत्माएं बार बार समझाने पर समझती हैं, और जो राक्षसी आत्माएं होती हैं वो बार बार समझाने पर भी नहीं समझती। जब विनाश का डंका बजता है तब उनकी समझ में आता है, बाकी समझना तो सबको जरूर है कि मैं आत्मा अगर पार्टधारी हूँ तो मुझे अपने जन्म जन्मांतर का पार्ट, जन्म जन्मांतर का बदला हुआ चोरा याद आना चाहिए या नहीं याद आना चाहिए। याद ही नहीं होगा तो चोले कैसे बदलेंगे, पार्ट कैसे बजाएंगे। तो बाप आकर के बताते हैं कि तुम सब एक्टर्स मेरे आने से पहले पार्ट तो बजाते थे लेकिन बेवकूफ एक्टर थे, अभी मैं आया हुआ हूँ तो बताता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तुम बुद्धिमान बाप के नंबरवार बच्चे हो, तुमको अपने पार्ट की स्मृति दिला करके जाऊंगा। तो सब मनुष्य आत्माओं को, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे द्वापर से आने वाली मानवीय आत्माएं हो, धर्म पिताएं हो, या दूसरों को दुख देने वाली राक्षसी आत्माएं हो, सबको अपने अपने पार्ट का पता चलता है। कब? जब ये 5000 वर्ष का ड्रामा पूरा होता है। जैसे महाभारत पुस्तक में लिखा हुआ है कि महाभारत युद्ध भगवान ने 5000 वर्ष पहले कराया था, परंतु गलती ये कर दी है कि उस युद्ध को उन्होंने द्वापर के अंत में दिखाई दिया, और एक बड़ी गलती की है कि 16 कला संपूर्ण कृष्ण को भगवान के रूप में बैठा दिया। अब बताओ, महाभारत युद्ध कराने वाला नौजवान रूप था या बच्चे का, कृष्ण बच्चे का रूप था जिसकी पूजा की जाती है? वो तो नौजवान रूप था जिसने गीता सुनाई, और गीता में आती है बात राजयोग की, जिस योग में राज भरा हुआ है उन राज की बातों को बच्चा जानेगा या बड़ा जानेगा? है, जो बड़ा होगा वो ही जानेगा ना। तो समझा नहीं कि वास्तव में कृष्ण वाली आत्मा जो 16 कला संपूर्ण है, वो 16 कला संपूर्ण द्वापर में कहां से आ गया? शास्त्रों में तो लिखा है सत्ययुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण और कलयुग कलाहीन रह जाता है। जब पूरा युग ही 8 कला संपूर्ण है तो द्वापर के अंत में 8 कलाएं कहां? 8 तो क्या, उन्होंने 16 कलाएं संपूर्ण कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाई दिया। अरे भगवान तो नरको क्या बनाता है, नारायण बनाता है। गीता में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुन को जो नर रूप में था, मनुष्य था, उसको ऐसा ज्ञान दिया गीता का जिससे वो नारायण बना। तो देखो 16 कला संपूर्ण नारायण बनने वाला है या बनाने वाला है? जिस नारायण के लिए कीर्तन करते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वो कृष्ण भी है, वासुदेव भी है, नारायण भी है। मनुष्य भिकारी होते हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, क्योंकि द्वापर युग से दो दो धर्म शुरू होते हैं। जैसे इब्राहिम आया, दूसरा धर्म शुरू हुआ, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते जाते हैं। तो उसे द्वैतवादी युग कहा जाता है। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं। जब द्वैतवाद बढ़ेगा, दो दो मत बढ़ेंगे, तो झगड़े बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? तो 2500 वर्ष से ये दुनिया में झगड़े की सृष्टि हो गई। जहां देहधारी धर्म गुरुओं ने आकर के अनेक धर्म फैला दिए, अनेक भाषाएं फैलाई दी, अनेक मत मतांतर फैलाई दिए, ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री है द्वापर से लेकर के कलयुग तक की। मनुष्य के पास प्रूफ प्रमाण सहित 2500 वर्ष से ज्यादा की हिस्ट्री है ही नहीं। चाहे दुनिया की बड़ी बड़ी खुदाइयां की हों, कितनी भी मूर्तियां, प्राचीन से प्राचीन कलाकृतियां, पट्टा विलेख मिले हों, उनमें से किसी से साबित नहीं होता कि ये सृष्टि 2500 वर्ष से ज्यादा पुरानी है, वो 5000 वर्ष से ज्यादा पुरानी है। उसमें भी दुख की सृष्टि का प्रूफ मिलता है, क्योंकि जब दुख पड़ता है तो भगवान को याद करते हैं या सुख में भगवान को याद करते हैं? कहते भी हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। दुखी होते हैं तो एक एक दिन भार ऊपर जाता है, समय काटना मुश्किल पड़ जाता है, समय बीतता ही नहीं है, ऐसे लगता है जैसे समय रुक गया। गीत भी बनाए हुए हैं, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीति समय तू जल्दी जल्दी बीत। तो देखो दिन दुख के टाइम में गिने जाते हैं या सुख के टाइम में गिने जाते हैं, ये दिनों की गिनती, महीनों की गिनती, वर्षों की गिनती, ये दुख की दुनिया की, द्वैतवादी दुनिया की गिनती है। जबकि मनुष्यों के चलाए हुए ये संवत निकले हैं, जैसे विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, ईसाइयों का ख्रिस्त संवत, कोई भी संवत 2500 वर्ष से ज्यादा पुराने नहीं है। ये दुख की दुनिया मनुष्यों के सामने है, लेकिन भगवान ने जो सुख की दुनिया स्वर्ग बनाया था, किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भगवान में क्या खासियत है? जो स्वर्ग की दुनिया बनाता है, मनुष्य में वो खासियत नहीं है क्या जो स्वर्ग बना सके? गांधी जी तो कहते थे मैं राम राज्य लाऊंगा, हैं? राम राज्य आया कि और ही रावण राज्य आ गया? आज की गवर्नमेंट भी, नेताएं भी उसी काम में लगे हुए हैं। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ऐसे ब्राह्मणों की भरमार है, उनके गुरु भी ये बात मानते हैं कि ब्रह्मा की औलाद हम ब्राह्मण स्वर्ग बनाएंगे। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए, उनका काम था ज्ञान सुनाना, रास्ता बताना, वो काम उन्होंने किया, ताकि प्रैक्टिकल स्वर्ग हम स्थापन करेंगे। प्रूफ क्या? अरे प्रूफ सामने आया, कोई पोस्टर नहीं देखे कभी? त्रिमूर्ति के पोस्टर, जिन पोस्टरों में तीन दादियां बैठी हुई है एक से एक ऊपर, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर, और ऊपर शिव ज्योति बिंदु, वो पोस्टर नहीं देखे? किसी के पास रखा हो तो हेड ऑफिस में भेज देना प्रूफ के लिए। वो पोस्टर साबित करता है कि हम ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ब्राह्मण हैं जिनकी बहुतायत है, जो समझते हैं कि हमें ही ब्रह्मा है, हमें ही विष्णु है, हमें ही शंकर हैं, हमें ही नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं, और हमारे द्वारा ही ये पुरानी दुनिया भस्म होगी। शंकर अलग से कोई नहीं है, और बाप कहते हैं कि स्वर्ग स्थापना का कार्य वो ही कर सकता है जो सदाकाल स्वयं स्थिति में स्थित रहता हो। अब बताओ ये सब 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि में कोई मनुष्य मात्र, कोई धर्म पिता, कोई धर्मात्मा ऐसा हुआ है जो सदैव स्वयं स्थिति में, आत्म की स्थिति में स्थित रहा हो? अरे आत्मा का रूप ही नहीं जानते कोई, सब अपन को देह समझते, पांच तत्वों का पुतला समझते, आत्मा का ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। बाप बताते हैं कि मैं स्वयं आकर के अपना परिचय देता हूँ। इस मनुष्य शक्ति में सदा काल स्वयं स्थिति में रहने वाला कोई भी नहीं है, एक मैं ही हूँ जिसका नाम शिव है और मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। ये नाम कभी बदलता नहीं है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं, वो सब काम के आधार पर पड़े हुए, जैसा काम वैसा नाम। तो शिव का काम क्या है, शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ ये है कल्याणकारी। वो इस सृष्टि पर आकर के है तो निराकार, जैसे हमारी आत्मा निराकार है वो आत्मा भी निराकार है, परंतु वो जन्म मरण के गर्भ के चक्कर में ना आने वाला वो शिव इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो हीरो पार्टधारी है उसका आधार लेता है, एक मुकर्रर रथ का आधार लेता है। मनुष्य ने कह दिया वो सर्वव्यापी है, मेरे में व्यापी है, तेरे में व्यापी है, सब में व्यापी है, कीड़े मकोड़े पशुओं में भी व्यापी है। अवतार दिखाई दिए, है ग्रीव अवतार, शुकरा अवतार, मगरमच्छ का अवतार, मछली का अवतार। तो देखो सोचने की बात है, भगवान आकर के गीता ज्ञान सुनाता है तो जानवरों को सुनाएगा या मनुष्यों को सुनाएगा? मनुष्य ही ज्ञान सुन सकते हैं क्योंकि मन बुद्धि प्रधान है। मन का काम है मनन चिंतन मंथन करना, जानवर थोड़े ही मनन चिंतन मंथन करेंगे। तो भगवान इस मनुष्य सृष्टि में उस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है जो आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाता है, पूरे 84 के चक्र में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जिसको हर धर्म में मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजों में एडम कहते हैं, मुसलमानों में आदम कहते हैं, हिंदुओं में तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, आदिदेव कहते हैं। और जैनियों में आदिनाथ कहते हैं। देखो नामों में भी कितना साम्य है। सभी धर्म वाले इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप उस हीरो पार्टधारी को मानते तो हैं, लेकिन जानते नहीं है। तो बाप आकर के परिचय देता है, अपना परिचय भी देता है कि मुझे आत्मा में ऐसी क्या विशेषता है जो मैं ही स्वर्ग स्थापन करता हूँ और कोई मनुष्य मात्र या पशु पक्षी की आत्मा स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकती। क्या विशेषता है? वो सदैव स्वयं स्थिति में स्थित रहने वाला है। इस मनुष्य सृष्टि में आता है चंचल मन वाले मनुष्य में आता है तो भी जिसमें प्रवेश करता है उसके मन को भी आप समान कैसा बना देता है, है? निश्चल बनाए देता है। आप समान का मतलब निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाए देता है। और ऐसा निरहंकारी जब इस मनुष्य शक्ति का हीरो बनता है तो उसे भगवान का बड़ा रूप, साकार रूप माना जाता है, जिसे मंदिरों में शिवलिंग के नाम से स्थापन किया गया है। किसका लिंग? शिवलिंग, शंकर लिंग नहीं। किसका लिंग? शिवलिंग। अरे शिव को इंद्रियां होती है क्या, है? उसको नाक, आंख, कान, हाथ, पांव होते हैं क्या? फिर ये कहां से आ गया? जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तन में प्रवेश करके ऐसा पार्ट बजाते हैं जिसकी यादगार प्राचीन से प्राचीन शिव के मंदिर में रखी हुई है। प्रवृत्ति मार्ग का सूचक, कच्चा प्रवृत्ति मार्ग वाला नहीं, ब्रह्मा की तरह या अन्य देहधारी धर्म गुरुओं की तरह नहीं, दूरवाज खुशवाज नहीं, स्त्री और पुरुष का जो ज्यादा से ज्यादा सुख देने वाला द्वापर युग कलयुग का अंग है, जिस सुख को याद करते स्त्री अंतिम समय में भी उस रूप को याद करके पुरुष का जन्म लेती है, और पुरुष स्त्री के उस अंग को याद करके जिससे उसने जास्ती से जास्ती जीवन में सुख भोगा है, अंतमतेसो उस पुरुष की भी गति हो जाती है। क्या गति हो जाती है? पुरुष स्त्री का जन्म लेता है। तो जो अंग कंट्रोल करने में कोई भी पुरुष इस संसार में विजयी नहीं हुआ, चाहे बड़े से बड़ा धर्म पिता हो, धर्मात्मा हो, उस अंग को कंट्रोल करके शिव जिसमें प्रवेश करता है उसे आप समान बना करके जाता है। इसलिए शंकर की उपाधि क्या है, है? शंकर की उपाधि देते हैं अमोघ वीर्य। कैसा? अमोघ वीर्य। और जितने भी मनुष्य पशु पक्षी हैं वो संग के संसर्ग संपर्क में आने से, स्त्री पुरुष के मेल होने से अमोघ भी ये नहीं बन पाते। नारकीय शक्ति जरूर पैदा करते हैं, कलयुग में जो पैदाइश हो रही है बच्चों की वो सुखदाई हो रही है माँ बाप के लिए या दुखदाई हो रही है, हैं? दुखदाई पैदा हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं आज की दुनिया की पैदाइश, ये मूत की पैदाइश, बिच्छू टिंडन की पैदाइश है, ये दुखी ही देते हैं। यहाँ तक कि जैसे बिच्छनी जब बच्चों को जन्म देती है तो पेट फाड़ करके बच्चे निकलते हैं। आज भी हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है? पेट फाड़ करके बच्चे पैदा होते हैं। तो ये मूत की पैदाइश ही ऐसी है, ये राक्षसी दुनिया की पैदाइश है। इसमें आज में भी दुख है, मनुष्य और स्त्री दोनों निस्तेज हो जाते हैं, थक जाते हैं। मध्य भी अच्छा नहीं होता, जीवन दुखदायी होता है और अंत भी हावड़े आते हैं। बुढ़ापा आता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ये विकारी दुनिया का सुख, राक्षसों की दुनिया का सुख है। ये उन राक्षसों की रचना है और ये दुख मई दुनिया दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि व्यभिचार का दोष बढ़ता है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो एक डाइवोर्स, दो डाइवोर्स, तीन डाइवोर्स, एक शादी, दो शादी, तीन शादी, संसार के सामने ढोल मजीरा बजा बजा के शादी, और फिर गुप्त रूप में भी वो शादियां चलती रहती। बाबा तो कहते विकार में जाना माना शादी, सिर्फ ढोल मजीरे बजाने को शादी थोड़े कहा जाता है। तो देखो भगवान बाप कहते हैं मैं ही संग को कंट्रोल करना सिखाता हूं। अब ये बात दूसरी है कि पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में एक तो अव्वल नंबर पास हो जाए और बाकी सब फेल हो जाए तो टीचर की कमी है या किसकी कमी मानी जाएगी? टीचर की कमी थोड़ा ही मानी जाएगी। एक स्टूडेंट ने कैसे वो पढ़ाई पढ़ ली? तो जो अव्वल नंबर में आता है वो अर्जुन कहा जाता है। क्या पुरुषार्थ का अर्जन किया? जो पुरुषार्थ संसार में बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, सारी दुनिया को जीतने के लिए निकले थे, वो कोई भी हिंसा के आधार पर दुनिया को नहीं जीत सके, क्योंकि वो सब विकारी थे। कोई की इंद्रियां कंट्रोल नहीं थी। और यहां तो गीता में गाया हुआ है इंद्रिय जीते जगत जीत, और इंद्रियों को कौन जीत सकता है? जो सदा काल की प्रैक्टिस करे स्वयं स्थिति में स्थित रहने, मैं आत्मा हूं। गीता में मिसाल दिया हुआ है, दीपक का मिसाल दिया है। निर्वात स्थान में जहां बिल्कुल हवा न चलती हो, ऐसे स्थान में दीपक रखा हुआ होता है तो हिलता डुलता है, हैं? ऐसे ही ये ज्योतिबिंदु आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा बिल्कुल स्थिर रहे बिंदु रूप में, एक सेकंड के लिए भी मन बुद्धि इधर उधर हिल करके न जाने पाए, लगातार आत्मिक स्थिति बनेगी तो क्या होगा? है इंद्रियां चंचलता नहीं करेंगी। उसके लिए मिसाल भी दिया है, महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाना जाता है, कारखाने में जाके उससे पूछा जाता है तुमने रास्ते में किसको किसको देखा, कहता मैंने किसी को नहीं देखा। अरे तुम क्या कर रहे थे, आंखें तो तुम्हारी खुली हुई थी। मैं तो अपनी महबूबा को याद में था। तो देखो ये मन कंट्रोल हो जाए, मन को पता चल जाए कि इस दुनिया में भगवान से ज्यादा सुख देने वाला और कोई है ही नहीं, भगवान से ज्यादा प्राप्ति कराने वाला और कोई है ही नहीं, अगर ये पक्का निश्चय हो जाए मन को बुद्धि को, तो मन बुद्धि हिलेगी है नहीं हिलेगी। ऐसे ही बताया, भगवान बाप आते हैं तो मन को स्थिर करके जो ग्यारहवीं इंद्री कही जाती है, दसों इंद्रियों में सबसे जास्ती प्रबल इंद्रिय है, उसको कंट्रोल करना सिखाते हैं। दुनिया में गुरु लोग क्या सिखाते हैं, आत्मा का योग परमात्मा से लगाना सिखाते हैं या देह का योग सिखाते हैं, प्राणायाम करो, कुंभक करो, रेचक करो, आसन लगाओ, उल्टे हो जाओ, पलटे हो जाओ, ये योग हो गया। अरे ये सब देह के योग हैं, देह के योग करने से देह मजबूत बनेगी, वो भी सदा काल की मजबूत नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि पत्तों को, टहनियों को, तनों को पानी देने से कभी भी वृक्ष सरसब्ज नहीं हो सकता, बीज को, जड़ों को पानी देने से वृक्ष सरसब्ज होता है। तो ये शरीर जो है, इसको चलाने वाली आत्मा रूपी बीज है, ये जो बीज है जब परिपक्व हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, स्वस्थिति में स्थित हो जाएगा, तो हम देवता बन जाएंगे। देवता नाम क्यों पड़ा? देने वाले बनेंगे, किसी से लेने वाले नहीं बनेंगे। देवताएं किसी से भीख नहीं मांगते, प्रकृति स्वतः ही हर चीज मुहैया कराती है। तो देखो भगवान क्या बनाता है, गीता ज्ञान दे करके, राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर का राजा बनाता है। नहीं तो कोई बताए कि हिस्ट्री में इतने जो राजाएं हुए, उन राजाओं को राजाई करने की शिक्त, राजाई करने की जो ताकत है वो किसने सिखाई? दुनिया में डॉक्टरी सिखाएंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाएंगे, ढेर प्रकार की पढ़ाइयां हैं, वो पढ़ाएंगे सारी दैहिक पढ़ाइयां। आत्मा की पढ़ाई तो कोई पढ़ाना ही नहीं जानता, इस ज्ञान का नाम ही है आध्यात्मिक ज्ञान। आदि माने अंदर, माने आत्मा के अंदर, देह के अंदर की जानकारी नहीं, वो बात की बात, आत्मा के अंदर की जानकारी जो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही देता है। और ये आत्मा इतनी पावरफुल बनती है कि एक जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर की राजाई ले सकते हैं। ऐसी पढ़ाई न कोई ने आज तक पढ़ाई है, न भूतकाल में पढ़ाई, न भविष्य में कोई पढ़ाई सकेगा 5000 वर्ष में, और न वर्तमान काल में कोई मनुष्य मात्र ये राजाई की पढ़ाई नहीं पढ़ाई सकता। ये राजयोग सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। कब सिखाते हैं? हर 5000 वर्ष के बाद, जिसमें पहले 2500 वर्ष हैं सुख की सृष्टि और बाद के 2500 वर्ष की है दुख की सृष्टि, मायावी सृष्टि। 2500 वर्ष की सुख की सृष्टि की कोई क्या उपास हिस्ट्री नहीं है, वो हिस्ट्री भी सच्ची सच्ची भगवान बाप को आकर के बतानी पड़ती है, नहीं तो अटरम सटरम हिस्ट्रियां बना दी हैं। त्रेता में राम राज्य था, राम राज्य का बड़ा गायन है, क्या गायन है? राम की सीता चुराई ली। वाह भैया, जब राजा की सीता चुराई ली गई तो और बिचारी प्रजा का क्या हाल होगा? ऐसे तो आज के जो मिनिस्टर होते हैं उनकी लड़कियों को भी किडनैप कर ले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता, पता ही नहीं लगता। जैसे कलयुग की दुख की दुनिया की राजाई, और जो भगवान सतयुग त्रेता की राजाई देता है उसमें फर्क ही क्या हुआ? भगवान जो आकर के राजाई देते हैं वो राजाई में तो निरंतर सुख है 2500 वर्ष का, शुरुआत ही होती है अतीन्द्रिय सुख से। ऐसा सुख अति इंद्रिय सुख है, इंद्रियों से अति, वो इंद्रियों का सुख नहीं है, इंद्रियां देह से कनेक्टेड है, वो आत्मा का सुख है, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वालों के लिए है। कौन सा सुख? अति इंद्रिय सुख। इसलिए गायन भी है भक्ति मार्ग में, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी नाम क्यों रखा है? जिन्होंने भगवान जब इस सृष्टि पर साकार तन लेकर के आते हैं तो साकार तन के द्वारा अनेक प्रकार के संबंधों का अनुभव किया है। इसलिए भगवान बाप कहते हैं इस संगमयुगी जन्म में जिस संबंध का अनुभव अनुभूति भगवान बाप से नहीं कर सकेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए उस संबंध के लिए प्यासे बने रहेंगे, वो सुख उपलब्ध नहीं होगा। इसे कहते हैं संगता रंग, संगतारे कुसंग बोरे। तो साबित हो गया इस 5000 वर्ष की सृष्टि में स्वस्थिति में स्थित सदैव रहने वाला भगवान 2500 वर्ष सुख की सृष्टि रचता है, राम कृष्ण की दुनिया। और जो मनुष्य मात्र हैं सीखने वाले, वो जब उनको राजयोग सिखाया जाता है तो क्या पहले ही दिन से संपन्न राजयोगी बन जाते हैं? हथेली पे आम जमाया जा सकता है क्या? जमाया जा सकता नहीं, कुछ न कुछ कमजोरी रह जाती है। जिनका आदि से ही पक्का फाउंडेशन होता है, क्या फाउंडेशन? पहली पढ़ाई। क्या पढ़ाई है पहली पढ़ाई? मैं आत्मा ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म कण ज्योतिर्मय कण प्रकृति के मध्य में उत्तमांग में ठहरने वाला सारे शरीर को कंट्रोल करने वाला वो राजा रूपी आत्मा मैं हूँ। मैं देह नहीं हूँ। जिसने ये पढ़ाई पक्की कर ली पहले ही दिन से क्या पक्की कर ली? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हम आत्मा तुम हो आत्मा आपस में भाई भाई ऐसे हैं? गीत बनाई दिए। गीत गाने से स्थिति बन जाती है क्या? गीत गाने से स्थिति नहीं बनती, उस स्थिति में प्रैक्टिकल में स्थिर होना पड़े। तो जो पहले दिन की पढ़ाई को ही पहले ही दिन से धारण करना शुरू कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, उनका फाउंडेशन पक्का हो जाता है। और किसी मकान का फाउंडेशन पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए, तो बिल्डिंग चाहे जितनी ऊंची उठाते जाओ, 84 के चक्कर की ये बिल्डिंग है। मकान बीच में धराशायी हो जाएगा क्या? है? हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन कुछ आत्माएं हैं भगवान से पढ़ाई तो पढ़ती हैं ब्राह्मण बनकर के, लेकिन भगवान की बात पर शुरुआत से उतना तवज्जो नहीं देती है। यहाँ तक कि ऐसी ऐसी आत्माएं भी हैं जो द्वापर युग से इब्राहिम जैसी इस्लाम धर्म की आत्मा आती है, जो स्वर्ग के दर्शन भी नहीं कर पाती, नरक की दुनिया में ही आती है, उसका आधार बन जाती है। वो इब्राहिम उनमें प्रवेश कर जाता है, और जिनमें प्रवेश करता है उनको भी जन्म देने वाले कोई बीज हैं। उन बीजों से वो पैदा होते हैं। तो बाप में कमजोरी होगी तो बच्चे में कमजोरी आएगी या नहीं? वो आधार मूर्तों में जो इब्राहिम आदि धर्म पिताओं के आधार बनते हैं उनमें वो कमजोरी आ जाती है। और वो कमजोरी का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में जब बाप आते हैं पहली पहली पढ़ाई पढ़ाते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, कनरस ले लेते हैं, भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है, जाकर के सुना और झाड़ के चले गए, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लाया। कोई कोई तो ऐसे हैं कि द्वापर युग के आज से ही कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम धर्म में। तो उन्होंने पूरी पढ़ाई पढ़ी या नहीं पढ़ी? है? नहीं पढ़ी। वहां जो कन्वर्शन होता है 5000 वर्ष में द्वापर युग से, उसकी शूटिंग कहाँ होती है? है? संगम पर शूटिंग होती है। आज भगवान बाप के बच्चे बनते हैं, कल गिलानी करने लग पड़ते हैं। आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है। किसी और की बातों को सुनने लग पड़ते हैं, जो बाबा ने बोला कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। आज ज्ञान लिया कि भगवान बाप आया हुआ है, कोर्स भी ले लिया, भगवान बाप के घर में जाकर के जन्म भी ले लिया गर्भ में, गर्भ जिसे कहते हैं गुप्त, वही खाना, वही पीना, वही श्वास लेना, वही बातचीत करना, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है। तो बाप के घर में जाके जन्म लेकर बच्चे भी बन जाते हैं, फिर दूसरे दिन ही कोई की बातें सुन करके अनिश्चय बुद्धि की मौत प्राप्त कर रही। कोई ने सुनाया, अरे कहां तुम चक्कर में फंस गए, वो भगवान नहीं है, बड़ा शैतान है, हम तुम्हें बताते हैं उसकी शैतानी, देखो ये अखबार कैसे छपे हुए हैं, इन अखबारों में देखो एक नहीं सैकड़ों अखबार है, इनमें देखो क्या क्या छपा हुआ, जेल गया था उसके ऊपर ऐसे ऐसे गंदे गंदे आरोप लगे थे, बस हो गया सत्यानाश। तो देखो पांच हजार वर्ष के बाद भगवान बाप इस सृष्टि पर एक ही बार आते हैं, बीच में पांच हजार वर्ष कभी भी भगवान बाप दुनिया वालों के सामने प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। बाकी ये जरूर है कि भगवान बाप का जो प्रतिरूप है, जो मंदिरों में लिंग रूप दिखाया गया है, जो ज्योतिबिंदु बाप शिव का बड़ा रूप है, ज्योतिबिंदु है सूक्ष्म रूप, उसका बड़ा साकार रूप है, वो मनुष्य सृष्टि का हीरो, उस हीरो पार्टधारी की वो एक्ट दिखाई गई है कि वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। कैसा पक्का? ऐसा पक्का जैसे गीता में कहा गया है कि संसार में दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक क्षर और दूसरी अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, जिनकी शक्ति क्षरित हो जाती है संग के रंग में आकर के, और दूसरी ऐसी जो कैसे भी संग के रंग में आए लेकिन उनकी शक्ति क्षरित नहीं होती। उनमें कौन कौन? अरे एक का तो नाम बताओ, अक्षर आत्मा में किसी एक का नाम तो बता दो, है शिव। लेकिन वो शिव इस सृष्टि पर आता है विरुद्ध लेकर के, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके जाऊंगा, मना कोई न कोई शिव समान बाप समान बनता है या नहीं बनता है?
बनता है।
जो बनता है उसका नाम दिया है शिव बाबा, उसके लिए बोला इस सृष्टि पर सदाकाल कायम चीज कोई है नहीं, सदाकाल कायम रहने वाली एक ही आत्मा है इस सृष्टि पर, शिव बाबा। मैं तो इस सृष्टि पर रहता नहीं, कौन? शिव तो रहता नहीं, वो तो आत्माओं का बाप है कि बाबा है, वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, आत्मा आत्मा भाई भाइयों का बाप है, दूसरा कोई संबंध उसके साथ बनता ही नहीं। जब इस सृष्टि पर आता है, साकार मुकर्रर रथ लेता है, तो अनेक प्रकार के संबंध निभाता है बच्चों के साथ, वो जो संबंध बनते हैं उनसे संग का रंग लगता है, जिनको संग का रंग लगता है वो राजयोगी बनते हैं, राजयोगी जो बनते हैं उनकी बुद्धि में वो राज की बात बैठती है, और वो जन्म जन्मांतर के राजा भी बनते हैं। नंबर वन, अभी बाप फिर से आए हुए, कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, ये राजयोग 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था, अभी भी सिखा रहा हूँ, 5000 वर्ष के बाद भी सिखाऊंगा। बाकी बीच में शिव बाबा जरूर इस सृष्टि पर कायम रहता है, लेकिन कोई पहचानता पहचानता नहीं है कि वो हीरो पार्टधारी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कहाँ पार्ट बजाएगा। कभी कभी अनुमान तो लगता होगा है, अनुमान भी नहीं लगता है, लगता है। अच्छा, अनुमान से नुकसान भी तो हो सकता है,
लेकिन वो अनुमान संगम युग में ही लगता है,
है?
संगम युग में ही अनुमान लगाया जा सकता है।
अनुमान से नुकसान जरूर होगा, अनुमान नहीं, प्रूफ चाहिए। आग जल रही है, धुआं निकल रहा है, धुआं ऊपर ऊपर दिखाई पड़ रहा है, तो प्रूफ है कि नीचे आग है, तो प्रूफ चाहिए। प्रूफ निकालने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि द्वापर के आदि में जब पहला ग्रंथ दुनिया का लिखा गया था गीता, तो द्वापर भी सात्विक स्टेज में था। हर युग 4 अवस्थाओं से गुजरता है। सात्विक स्टेज में जो गीता लिखी गई, उस गीता के अर्थ को या तो व्यास प्रसाद आप व्यास जी जानते थे, या तो उस गीता के अर्थ को वही व्यास वाली आत्मा अंतिम जन्म में जिसमें भगवान बाप प्रवेश करे तो वो ज्ञान सूर्य जानेगा। इसलिए कहावत है, कह समझे कवि या समझे ज्ञान सूर्य रवि। तो वो ज्ञान सूर्य रवि फिर आया हुआ है। आज में भी जब आता है तो भी गीता का विस्तार सुनाता है, गीता की सही गीता भगवान स्वयं कर सकता है टीचर के रूप में, या कोई दूसरा मनुष्य मात्र कर सकता है। दूसरे मनुष्य मात्रों ने ढेर टीकाएं लिख दी, बड़े बड़े शंकराचार्य जैसे विद्वान हुए, 8 वर्ष की उम्र में जिन्होंने 4 वेद याद कर लिए थे, वो शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, आत्मा सो परमात्मा। और माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं सब अलग अलग, सब के अंदर अपने अपने अलग अलग संस्कार, इसका प्रूफ है एक का चेहरा न मिले दूसरे से। और उन आत्माओं का बाप जो परमपिता परमात्मा है वो अलग, तो देखो कितना फर्क हो गया, मूल बात में ही इतना फर्क। और धुरंधर जो व्याख्या का टीकाकार हुए हैं गीता के, उनमें इतना फर्क हुआ, तो दूसरे दूसरे जो छोटे छोटे टीकाकार हैं उनकी टीकाओं में तो कितना अंतर है। और सभी ने मान लिया गीता का भगवान है कृष्ण, कौन से युग का, द्वापर के अंत का। कृष्ण को भगवान बता दिए, जबकि गीता में ढेरों ऐसे श्लोक हैं जो भगवान को निराकार साबित करते हैं, अकर्ता साबित करते हैं, अभोक्ता साबित करते हैं, अजन्मा साबित करते हैं। ये भी साबित करता है गीता का एक श्लोक कि मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, प्रवेश तुम शब्द भी आया है। ये भी साबित करती है गीता कि मैं इन सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार पार लोक का रहने वाला हूँ, इस दुनिया का रहने वाला नहीं। और मनुष्यों ने क्या कह दिया, भगवान इस दुनिया में सर्वव्यापी है। देखो गीता को बिल्कुल खंडन कर दिया। ओम शांति।